तालीम का हर्ज भी नहीं होगा। मशवरे में लोग आएंगे, स्टूडेंट्स के पॉइंट को आप लोग खास तौर से लो, दीगर उमूर को जैसे लेते हो ऐसे,
फिर उनको भी अलग बिठाओ, पूरे ज़िले वालों को, और एक दूसरों के वहाँ क्या हो रहा है, क्या कमी है, आपस में मुज़ाकरा करेंगे। जहाँ हो रहा है दूसरे उनसे लेंगे, नहीं हो रहा है वो लोग जहाँ हो रहा है उनसे पूछेंगे, ताकि मजबूत शक्ल बने। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, 10वीं वाले, 11वीं वाले, 12वीं वाले, दीगर, उनको सबको हमें आमाल में जोड़ना है, सबको काम में शरीक करना है। ये जो मेहनत है, दावत की मेहनत, वो हर फर्द उम्मत के लिए है, हर एक के लिए। जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम है। उसमें चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, या और किसी शोबे से मुतालिक हो, कहीं भी है, हर एक के ज़िम्मे ये मेहनत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं, लास्ट मैसेंजर, लास्ट प्रोफेट। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी, बोलो ना भाई, अब कोई नबी आएगा? कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और ये उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत है। अब कोई और नबी नहीं आएंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के सदक़े में जो इंसानों के साथ खैरख्वाही और भलाई का काम है, वो हम सबको दिया है, हम सबको दिया है। जवान हो, बूढ़ा हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, ताजिर हो, काश्तकार हो, मुलाजिम हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बोलो ना भाई, उम्मती हैं। ये हमारा सबसे पहला तारुफ है, ये हमारी पहली ओड़खाण है। ओड़खाण करते हैं ना, ओड़खाण, भाई कौन है आप, आप कौन हैं? तालीमुल इस्लाम है ना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की, उसमें उनके आप कौन हैं, यानी मजहब के अतबार से आपका क्या नाम है, पहला सवाल है उसका। ही बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसमें, आप कौन हैं, यानी मजहब के अतबार से आपका क्या नाम है, ऐसा सवाल है। फिर उसके जवाब में उसने कहा, मैं मुसलमान हूँ। तुम्हारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। हमारा मजहब क्या है? इस्लाम है। और हम कौन हैं, बोलो ना भाई, हम मुसलमान हैं। मुसलमान हमारा नाम किसने रखा है? हमारा नाम मुसलमान किसने रखा? अल्लाह ने। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुमको अल्लाह ने मिल्लत इब्राहिम पर पैदा किया और अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हमारा नाम क्या है, बोलो ना भाई, मुसलमान है। सब जितने भी कलमा पढ़ने वाले दुनिया में, सब एक जात, कितने जात, बोलो ना भाई, एक जात, कौन सी जात, मुसलमान। फिर उसमें उड़खान के वास्ते कबीले अलग अलग हैं, खानदान, कोई पठान है, कोई सैयद है, कोई दरबार है, वो उड़खान के वास्ते हैं। बाकी जात कौन सी हमारी, बोलो ना भाई जोर से, सब मुसलमान। हम सब कौन है, मुसलमान हैं। ये हमारी उड़खान है, ये हमारी पहचान है, हम अल्लाह के बंदे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रिश्ता है, हमारी एक नस्बत है, और ये बहुत ऊंची नस्बत है। हम सब के लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की चीज़ ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हैं, उम्मती हैं। बड़े फ़ख्र की चीज़ है, इसलिए हमको मुसलमान बन के रहना है। एक काम करना, पहला काम कौन सा है, क्या क्या बन के रहना है? मुसलमान का माना क्या है, मानने वाला। मुसलमान का तर्जुमा क्या है, मानने, किसकी, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान मानने वाला, इताअत करने वाला, कि अल्लाह का जो हुक्म होगा उसको पूरा करेंगे। पहला हुक्म अल्लाह का है कि अल्लाह को एक मानेंगे, अल्लाह एक है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही मारता और जिलाता है। जिंदगी और मौत का मालिक कौन है, अल्लाह। वो चाहे तो बीमार को तंदुरुस्त कर दे और चाहे तो हट्टे कट्टे पहलवान को एक सेकंड में, एक सेकंड में मौत के मुंह नींद सुला दे उसको, एक सेकंड में आदमी चला जाता है। किसने मौत दी इसको, अल्लाह ने दी है। तो इस अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना। अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की 5 वक्त की, कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ की, پانچ ٹائم کی نماز اللہ نے فرض کی ہر مسلمان پر، ہر عاقل بالغ مسلمان، مرد عورت سب پر، عاقل ہو یعنی عقل والا ہو، بالغ یعنی لڑکا 15 سال اس سے اوپر ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو گئی نماز. اب پانچ ٹائم کی نماز روزانہ پڑھنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ پانچ نمازیں ہیں. یہ پانچوں نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی. جو پانچ ٹائم کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی زندگی میں، اس کی روزی میں، اس کے کاموں میں، ساری چیزوں میں اللہ کیا دے دے گا؟ بولو نے بھائی، برکت. برکت تانبے کی ہوتی ہے کہ پیتل کی؟ بولو نے بھائی، برکت دیکھی ہے کسی نے؟ گام میں کوئی نام نہیں برکت کہیں گا. برکت جو ہے نا، برکت بہت بڑی چیز ہے، برکت بہت بڑی چیز. وہ تانبے پیتل کی نہیں ہوتی، وہ بازار میں ملتی نہیں ہے، کسی کے کھیت میں اگتی نہیں، کسی دکان میں ملتی. برکت عمل کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ برکت ہے، ہر ایمان والے کے ساتھ ہے. اور برکت عمل کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے. جیسے خون میں کرن ہوتے ہیں نا، بلڈ میں، ابھی آج کل لائے نا سفید کرن اور لال کرن، پتہ نہیں کیسے وہ دکھتے ہیں کسی کو، لیکن وہ کرن میں پاور ہوتا ہے. کمپلیٹ کرن ہے تو جسم طاقتور ہے، اور وہ کرن کم پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی، آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. حالانکہ پورا بدن اس کا موجود ہے، بلڈ بھی موجود ہے، لیکن اندر کا کرن گیا. ایسے برکت، برکت جب ہوتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، ایگزام آسان، یہ برکت ہو گئی. اسٹوڈنٹس کی برکت کہاں ہوئے کہ اس کے لیے ایگزام آسان، پڑھائی اس کے لیے آسان ہے، سیدھا سیدھا چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، کہ اس میں برکت ہو رہی ہے اور کامیاب ہوتا جا رہا ہے. کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کامیاب. وہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ نمبر کم ملے، پرسنٹیج کم آئے، لیکن اگلا ایڈمیشن ہو گیا بغیر کسی مشقت کے، اس کی برکت ہو گئی. کیا ہو گیا؟ بولو نا بھائی. اور بعض مرتبہ کسی کو نمبر، پرسنٹیج فل ملے، لیکن جہاں ایڈمیشن لینا تھا وہ ملا کہ بے برکت ہی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی ہوگی، اعمال میں کمی آئی ہوگی، یا چوری کر لی ہوگی ایگزام میں. یہ تو چوری شمار ہی نہیں ہوتی آج کل. چوری کی بھی بہت ساری قسمیں ہو گئی نا اب تو. پہلے تو خالی ایسا تھا کہ رات کے وقت میں لنگوٹ اور بنیان باندھ کے نکلے، وہ چور ہوتے تھے. اب تو چوروں کی بھی قسمیں ہو گئی، چوری کی بھی قسمیں ہو گئی. تو یہ بھی چوری ہے، ایگزام میں ہوتی ہیں. جو مسلمان تو سب جگہ ایمانداری سے رہتا ہے، کیسے رہتا ہے؟ ایمانداری سے رہتا ہے، بے ایمانی کسی جگہ نہیں کرتا، ایگزام میں بھی چوری نہیں. کہ بھائی محنت کر کے ایمانداری سے پڑھیں گے، سال بھر محنت کر کے پڑھیں گے، اس کو جہاں سے پوچھنا ہو پوچھنا ہے. جب محنت سے پڑھا ہے تو کیا کہے گا آدمی؟ جہاں سے پوچھنا ہو پوچھ لو. جو پکا حافظ ہوتا ہے نا، پکا حافظ ہو، بھائی پڑھو کہاں سے پڑھو بولو، تم کو جان نہیں، تم بولو کہاں سے پڑھو، ویسا کہتا ہے، تم بولو کہاں سے پڑھو. کیونکہ 15 پارے کے پہلی آیت پڑھ دو، شروع کر دیتا ہے وہ. اور برابر یاد نہ ہو تو برابر وہ بھائی بھائی یہاں سے پڑھو تو خاموش بیٹھتا ہے، یہاں سے پڑھو تو خاموش، بھائی چلو تم کو جہاں سے آتا ہوں وہاں سے پڑھو. تو پھر وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ بھی چوری ہے نا، بولو بھائی، چوری نہیں ہے؟ تو چوری نہیں کریں گے انشاءاللہ، طے کرو کہ چوری نہیں کریں گے. چوری نہ کر کے محنت کر کے پڑھنا یہ کمال کی چیز ہے. پھر ایسا آدمی ایمانداری کے ساتھ کہ ہم تھوڑے پیسوں کے لیے پڑھتے، پیسوں کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ پیسوں کے لیے پڑھتے؟ پیسوں کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. دنیا تو مقدر کی ملنے والی ہے، دنیا تو مقدر کی ملنے والی ہے. جتنی اللہ نے طے کر رکھی ہے اتنی دنیا جب تک ملے گی نہیں، موت آئے گی، وہاں تک موت آئے گی نہیں. اور اس میں سے جتنا ہمیں استعمال کرنا ہے اس کا ایک ایک گھونٹ جب تک پورا نہیں ہوگا وہاں تک موت آئے گی. اور جتنا بچا کر ہماری مقدر میں چھوڑ کے جانا ہے اتنا پورا نہیں آئے گا وہاں تک موت آئے گی. تو اس لیے طے کرو چوری نہیں کریں گے اب، اور محنت کر کے پڑھیں گے. کون کون محنت کریں گے؟ محنت میں سب سے پہلی چیز ہے کہ پابندی سے اسکول جانے کا. گامڑوں میں جو ہے نا مدن لڑکے پابندی سے جاتے، ایک دن بس نکل گئی، دوسرے دن بس پنچر ہو گئے راستے میں، ایسا ہوتا ہے نا. وہ اسکول میں تو رجسٹر میں ہی لکھا جاتا ہے بس پنچر تھے گیا جی، اور ایک دن بس چوک گئے تھے، کبھی دادا بیمار ہو گئے، ایسا ہو جاتا ہے نا بھائی. کبھی لگن آ گیا پڑوس کے گام میں تو وہاں چلے گئے. تو گامڑے کے بچے جو ہے پابندی کرتے نہیں، اسکول والے بہت شکایت کرتے ہیں. तो आप लोग तो ऐसी शिकायत का मौका नहीं दोगे, पाबंदी करोगे? कौन कौन करेगा? स्कूल पाबंदी से जाने का, जो भी काम कर रहे हैं उसको पाबंदी से करना चाहिए और उसको पूरा पूरा करना चाहिए, और मेहनत के साथ पढ़ाई करो। जो जिस लाइन में है अपनी पढ़ाई को मेहनत से करें, ये भी ईमानदारी है, ये भी क्या है? ईमानदारी है। मुसलमान जो है अपना जो भी काम करता है उसको सलीके से तरीके से करता है, नाजायज़ काम करता नहीं है, सारे जायज़ काम करता है। सारे कैसे काम करता है? और हर जायज़ काम को तरीके से करता है, बेईमानी नहीं करता, चोरी नहीं करता है। इसलिए तय करो इंशाल्लाह पक्के मुसलमान बन के रहेंगे। बनोगे इंशाल्लाह तो नमाज, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने, उससे बरकत हो जाएगी। अल्लाह ताला कामों को आसान कर देता है, सारे काम आसान हो जाएंगे। और अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारनी है। कैसी गुजारेंगे? किसकी सुन्नत? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सुन्नत पर अमल करेंगे। हमारा लिबास भी कैसा होगा? सुन्नत वाला लिबास होगा। हमारा चेहरा मोहरा भी कैसा होगा? सुन्नत वाला होगा। जो आदमी सुन्नत वाली ज़िंदगी गुजारेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की वजह से अल्लाह उसको इज्जत देगा। क्या देगा? इज्जत दे देगा। सब लोग उसकी इज्जत करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कॉलेजों में, बहुत सारे हैं कि जो सुन्नत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर लिबास पहनते हैं, सुन्नत के मुताबिक वहाँ रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत दी है। कॉलेज वाले भी सब उसकी इज्जत करते हैं। हाँ, तो ये तय करो कि इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। इनमें से बहुत सौ ने जमात में वक्त लगाया, बहुत सी सुन्नतें सीखी होगी। खाने की सुन्नतें हैं, सोने की सुन्नतें हैं, और बहुत सारी सुन्नत जो है ना, सुन्नत वाला तरीक़ा वो ऐन इंसानी तबीयत और इंसान की ज़रूरत के मुताबिक है। सुबह उठकर सबसे पहली सुन्नत है मिसवाक करना। क्या है? दातण कहते हैं, दातण या वो सबसे पहली सुन्नत है सुबह उठकर पहले क्या करने का? मिसवाक करने की, मिसवाक सुन्नत की नीयत से। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजे के लिए जाते थे मिसवाक करने के बाद, और फिर आकर मिसवाक करते थे, और फिर वुजू करते थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? वुजू। अब वुजू में क्या क्या होता है? वुजू में क्या करने का है? वुजू में मिसवाक करके अच्छी तरह दांत साफ करते हैं बराबर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठकर जबान भी साफ करते थे। नसई की एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को, खड़ी मिसवाक को जबान पर फेरते थे, हत्ता यकूल आ आ, ऐसा रिवायत में। यानी मिसवाक इतने अंदर तक जाती थी कि जब ऐसा निकल जाता था आ आ, ऐसा होता था, रिवायत में ही है। तो जबान भी साफ करते थे, कफ जमा होता है जबान पर, कचरा रात भर का जमा, तो सारा फ्रेश हो जाता है। तो कितनी बड़ी सुन्नत है। तो सुन्नत की नीयत से मिसवाक करेंगे, करोगे इंशाल्लाह। जो लोग मिसवाक पाबंदी से करते हैं ना, लंबी उम्र तक उनके दांत गिरते नहीं, लंबी उम्र तक दांत और मसूड़े मजबूत। मिसवाक के फायदों में इब्ने कय्यिम ने फायदा लिखा है कि मसूड़ों को मजबूत करती है वो, तो मिसवाक से मजबूत हो जाते हैं, और सफाई भी अच्छी होती है, मुंह में खुशबू पैदा होती है, और एक फायदा लिखा है कि मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। तो करोगे सब मिसवाक? कौन कौन करेंगे? तो ये वुजू का एक हिस्सा हुआ। अभी तो मुंह का काम पूरा हो गया, अब उसके ऊपर क्या है बोलो ने? मुंह के ऊपर नाक है ना, नाक। सुन्नत है कि वुजू से पहले आदमी 3 मरतबा नाक में पानी डाले और नाक के नरम हिस्से तक पहुंचावे, खाली नाक को सूंघावे नहीं, पानी पानी बाएं हाथ में लेकर इस तरह खींचकर नरम हिस्से तक पहुंचा, फिर ये चुंगली से बाएं हाथ की आखिरी उंगली से अंदर बराबर घुमाकर नाक को साफ कर ले, तो फ्रेश हो गया, नाक साफ कर ले, और फिर 3 मरतबा उसको झाड़ के साफ कर ले, फिर चेहरा धोएगा, कानों का मसा होगा, हाथों की उंगलियों का मसा होगा, पैर की उंगलियों का मसा, तो कितना फ्रेश हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, हो जाए। कितना खर्चा होगा इसमें बोलो ने भाई? कोई खर्चा नहीं, फ्रेश एंड स्मार्ट। फ्रेश भी हो जाएगा, और सर में तेल डालें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आदमी सर में तेल डाले हो, और अच्छा तेल डाले, बालों में नहीं सर में डाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दूसरे दिन डालते थे और इतना तेल डालते थे कि टोपी के नीचे कपड़ा रखना पड़ता था, वो कपड़ा जो है ना तर हो जाता था तेल से, इतना सारा तेल सर को पिलाते थे। तो तेल डाले ताकि सर ठंडा रहे, दिमाग दिमाग बराबर चले। अंदर की रगों में तेल उतारने का होता है, तेल पीने का नहीं है, तेल क्या करने का है, रगों में उतारने का है, तो सर ठीक हो जाए। तो सुन्नत भी है और जिस्म की सेहत भी है, हेल्थ भी है इसमें, सुन्नत भी है सेहत भी है। तो सुन्नत के मुताबिक वजू करोगे इंशाल्लाह, सुन्नत के मुताबिक वजू करना सीखा है किसी ने? एक सहाबी रदी अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कुछ लोगों को जमा किया, हज़रत अली ने कहा भाई आ जाओ, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा वजू देखना हो तो मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। और फिर ये जो वजू है पूरी रिवायत, दोनों हाथ गट्टों तक धोना, फिर वो पूरी रिवायत हुई है जिसमें उन्होंने करके बताया। इसलिए जो उलमा हैं बस्ती में या जानने वाले हैं, ऐसे लोगों से वजू का सही तरीक़ा सीखना चाहिए। वजू तरीका सही तरीक़ा सीख लिया तो इसको अब ज़्यादा फ्रेश होने की ज़रूरत, वो तो ऑलरेडी ऑल टाइम एनी टाइम फ्रेश, सुबह उठते ही शाम तक फ्रेश। दिन में 5 मरतबा वजू करेगा ना, तो हर वक्त उसकी नाक साफ ही होगी, हर वक्त कान साफ, हर वक्त उसके बाल ठीक होंगे, हर वक्त उसके हाथ साफ, उसके अंदर हाथों के बीच के जो वो है दो उंगलियों के गैप वो भी साफ, उसके नाखून साफ, किसी जगह कचरा होगा तो तय करो इंशाल्लाह कि हर काम को कैसे करेंगे, सुन्नत के मुताबिक करेंगे। तो उसमें ज़ाहिरी फ़ायदा जिस्मानी भी होगा और बातिनी फ़ायदा ये होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े का नूर मिलेगा। क्या मिलेगा? हुजूर के तरीक़े का नूर मिलेगा और उस पर सवाब मिलेगा, आखिरत में अजर मिलेगा। ऐसा वुजू करने से हदीस में आता है कि इन अज़ा से जो सगीरा गुनाह हुए हैं वुजू के पानी के साथ सब धुल जाते हैं। वुजू की फजीलत है ना कि जितने सारे सगीरा छोटे छोटे जो गुनाह हो गए हैं वुजू के पानी के साथ सारे धुल जाते, और एक नमाज से बीच दूसरी नमाज तक जितने गुनाह छोटे गुनाह हुए हैं उन गुनाहों को अल्लाह ताला एक नमाज के जरिए दूसरी नमाज के जरिए से माफ़ कर देता है। तो पाबंदी करोगे इंशाल्लाह। लेकिन जो बड़े गुनाह हैं, आँखों से जानबूझकर गलत देखा है और कानों से संगीत सुना है और हाथों से किसी पर जुल्म किया है, किसी को मारा पीटा हाथ से, कदम से जाकर कोई बड़ा गुनाह किया है, किसी बड़ी उम्र के आदमी का ठट्ठा किया है, माँ बाप की नाफरमानी की है, किसी को गाली दी है, ये बड़े बड़े गुनाह हैं। इन बड़े गुनाहों की तौबा करनी पड़ती है। जिनको सताया है उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। स्कूल में टीचर को सता के परेशान करके आ जाते हैं लड़के, अरे आते नहीं आते, और प्यून को तो कोई उसका तो कोई क्लास ही नहीं है, चाहे वो बार पास हो लेकिन हमारे यहाँ तो फैली है वो। तो जितनों को परेशान किया, माँ बाप को परेशान किया है, तो उनसे सबसे माफ़ी मांगनी है, मांगोगे इंशाल्लाह। और माँ बाप की खिदमत करें। देहात के लड़के तो करते ही करते अमूमन, शहर में ज़्यादा नाफरमानी होती, लेकिन आप लोग भी तय करो माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे। जो बच्चे माँ बाप की खिदमत करेंगे ना अल्लाह उनकी दुनिया अच्छी कर देगा। उलमा ने लिखा है कि जो अपनी दुनिया अच्छी चाहता हो अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, और जो दीन और इल्म चाहता हो वो अपने उस्तादों की खिदमत करे। जो दीन चाहता हो, इल्म चाहता हो, और जिसका वो ज़माना गुजर गया अब, तो अब वो अहले इल्म की इज्जत करे, कदर करे, तो अल्लाह उसकी औलाद को इल्म दे देगा, अल्लाह उसकी औलाद को इल्म दे देगा। इसलिए माँ बाप को परेशान न करें, उनका काम कर दें, उनकी खिदमत करें, उनकी इज्जत करें। माँ बाप के हुकूक हैं, फजाइल सदकात में लिखे हैं कि उनके आगे न चलें, उनसे ऊपर न बैठें, उनको नाम लेकर न पुकारें, माँ बाप को नाम लेकर न पुकारें, अम्मी अब्बा कहें। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, और गुनाहों से बचावे अपने आप को। खुसूसन ये जो दौर है, मखलूत तालीम का निज़ाम है, स्कूलों में, प्राइमरी में, हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियां एक साथ तालीम लेते हैं, तो उसमें इख्तलात में बहुत सारे गुनाह होते हैं और बदनजरी तो होती होती है, जो बहुत बड़ा गुनाह है। आंख जो है ना, आंख वो दिल की विंडो है, खिड़की है, आंख दिल की खिड़की है। एक बंद कमरा है, एक ही खिड़की है खुली हुई, और बाहर गर्मी है तो वहाँ से ठंडी हवा आएगी, बोलो ना भाई, पूरे कमरे में गर्म हवा आएगी। बाहर डस्ट उड़ेगा, धूल उड़ेगी, तो सारी धूल अंदर कमरे में आ जाएगी, पूरा कमरा गंदा हो जाएगा एक ही खिड़की की वजह से, कि वो खिड़की से अंदर आता है। ऐसे दिल जो है, आदमी का दिल बहुत अच्छा है, اللہ نے فطرت کے مطابق ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر نو مولود فطرت پر پیدا ہوا, لیکن اس کا ماحول فآباواہو سے, یعنی ماں باپ اس کو یہودی نصرانی بناتے, یعنی ان کا جو ماحول ہوتا ہے, جس ماحول میں آدمی رہتا ہے, اس ماحول کی وجہ سے وہ یہودی بن جاتا ہے, نصرانی بن جاتا ہے یا مجوسی بن جاتا ہے. تو ایسے کام کرتا ہے, پھر وہ مسلمانوں والے کام نہیں کرتا. بل غلط دیکھنا یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے, کسی کی بہو بیٹی کو, کسی لڑکی کو دیکھنا یہ مسلمان کا کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا قرآن میں, ایمان والوں سے کہا کہ نظر جھکا کر چلیں. کیسے چلیں؟ نظر جہاں بھی چلیں اپنی نظر نیچی ہوگی, نیچی نظر سے چلیں. شریف لوگ ہمیشہ اپنے کام سے کام پر جاتے ہیں اور نظر جھکا کر راستہ چلتے ہیں, ادھر ادھر نہیں دیکھتے. اپنی نظروں کی خوب حفاظت کریں, نظر کی حفاظت رہی تو پورا جسم محفوظ رہے گا, اور اگر نظر آوارہ ہو گئی تو پھر پورا جسم آوارہ ہو جائے گا. اس لیے اپنے نظر کی حفاظت کریں. کانوں کو سنگیت سے بچاویں. جانے انجانے آج کل تو سب جگہ سنگیت رنگ ٹون میں ہوتا ہے, بسوں میں بجتا ہے, گاڑیوں میں ہوتا ہے, گھروں میں, یہاں شادیوں میں بینڈ بجتے ہیں, باجے بجتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچاویں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا کہ میں دنیا سے غنا یعنی سنگیت کو مٹانے کے لیے آیا ہوں, میں اس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا الغناء الغناء ينبت النفاق, سنگیت جو ہے نا سنگیت, وہ دل پر نفاق کی کھیتی کرتا ہے. جیسے پھر آگے مثال دی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کما ينبت المطر الزرع, جیسے بارش سے کھیتی ہوتی ہے, بارش کی سے کھیتی نکل آتی ہے. ایک ہی برسات ہوتا ہے تو کیسے زمین ہریالی ہو جاتی ہے, سب جگہ سے گھاس نکل آتی ہے. ایسے ایک مرتبہ آدمی نے سنگیت سنا تو فوراً اس کے دل پر نفاق کی کھیتی ہوتی, دوگلا ہو جاتا آدمی, نفاق دوگلا ہو جاتا. اس لیے اپنے آپ کو سنگیت سے بچاویں. سانگ جتنے بھی ہیں نا اس میں ایئر فون ڈال کر بچے سنتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو بچاویں اس سے, اپنی حفاظت کریں. تنہائیوں میں بھی اپنی حفاظت کریں. جتنا وقت فارغ ہو اپنی پڑھائی میں لگیں, اپنے فارغ وقت پڑھائی میں لگاؤ, محنت کرو, اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں. مسجد میں تعلیم ہوتی ہے نا بھائی, مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے سب جگہ, اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھ جاویں, 10 منٹ 15 منٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کی باتیں سنیں. کتنی پیاری باتیں ہیں اس. حضرت مصعب ابن عمیر کا قصہ سنا ہے؟ بولو بھائی, حضرت مصعب ابن عمیر کا قصہ کس نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو نا, کس نے سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے, اور دو تین اور چار, اور کس نے سنا ہے مصعب ابن عمیر کا قصہ؟ آپ نے بھی سنا ہے, اور کس نے سنا ہے حضرت مصعب؟ لڑکے بتاؤ, لڑکے یہ والے ادھر والے, مصعب ابن عمیر کو جانتے ہیں؟ کون کون جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو نا بھائی, جانتے اتنے لوگ, 1 2 3 4 5 6 7 8, اور کون جانتا ہے؟ مصعب ابن عمیر 60 سال کے تھے نا وہ, ہے بھائی کتنے سال کے تھے ہے؟ اب برابر اس میں کتاب میں دیکھنا, فضائل اعمال میں ان کا قصہ ہے. ایک نوجوان صحابی تھے, بالکل نو عمر, ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جب اسلام قبول کیا, چھوٹے سے تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ روزانہ کتنے درہم کا جوڑا پہنتے تھے؟ 200 درہم. ایک درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے, چاندی کا سکہ ہوتا ہے. ایک تولہ کتنے کا ہے؟ 500 کا یا 700 کا ہے؟ یعنی ابھی کے اعتبار سے 200 درہم جو ہیں وہ ہزاروں روپے ہوں گے, ہزاروں میں ہوں گے. تو روزانہ ڈیلی پر ڈے ایک نیا ڈریس ہے کوئی اس میں بھائی, کوئی ہے اس میں؟ اور ہزاروں روپے کا ڈریس روزانہ, اور سب سے عمدہ خوشبو لگاتے تھے. ہم تو خوشبو کو کیا جانے, بدبو میں ہی زندگی پر بچپنا گزر گیا, بچپن میں جوان ہو گئے, بھائی خوشبو کیا ہے جانتے ہی نہیں ہے, اور لگا دیا تو کیمیکل لگاتے ہیں. خوشبو جو ہے نا, خوشبو عرب خوشبو کے عاشق ہوتے ہیں پہلے سے ہی, اور اصلی خوشبو لگاتے ہیں وہ. تو روزانہ نئی نئی خوشبو ان کے لیے آتی تھی, وہ لگاتے تھے. ان کے ماں باپ بہت لاڈ پیار سے رکھتے تھے ان کو, سارے نخرے برداشت کرتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, دیکھا کہ بھائی ہمارے نبی ہیں, رسول ہیں, سچا دین پیش کر رہے ہیں, تو اسلام قبول کر لیا. तो उनके अब्बा नाराज़ हो गए, घर से निकाल दिया, सारा लाड़ प्यार ख़त्म हो गया, सारी ऐशो इशरत की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो फिर ज़िंदगी भर फ़कीर रह के फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारी, अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं छोड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़े मरतबा उनको देखते थे तो आपके आंखों में आंसू आ जाते थे कि कितनी तकलीफ़ उठा रहा है, कितनी तकलीफ़ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के काम, अल्लाह का काम करते 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 शहीद हो गए। उनका किस्सा है तफसील से फ़ज़ाइल आमाल में, ऐसे और दीगर नौजवान सहाबा के किस्से हैं, हज़रत अनस का किस्सा है, वो भी नौजवान थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर भी उस वक्त नौजवान थे, उनका किस्सा है। ये हमारे लिए आइडियल है। ये लोग कौन है? हज़रत हसन का किस्सा है, हज़रत हुसैन का किस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे थे ना, दो नवासे थे ना, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। तो इनके किस्से हैं फ़ज़ाइल आमाल में। तो रोज़ाना आप लोग तय करो कि पाबंदी से तालीम में बैठेंगे। कौन कौन बैठेंगे? जो लड़के अपने गांव में मोहल्ले में रहते मस्जिद की तालीम में बैठ जाओ। कोई हॉस्टल वाले भी लड़के हैं इसमें? हॉस्टल वाले नहीं है। अगर हॉस्टल वाले लड़के नहीं लेकिन आपके यहाँ हॉस्टल हैं, बीरमगाम में होगी, दसाड़ा में होगी, सुरेंद्रनगर में हॉस्टल, जहाँ 5-25 लड़के रहते होंगे, या बाकायदा कोई नामजद हॉस्टल नहीं है लेकिन किसी घर में 5-25 लड़के रहते हैं किराए पर रख, तो उनकी मुलाकात करें। अगर मस्जिद करीब है तो उनको मस्जिद से जोड़ लें, और अगर मस्जिद दूर है, हॉस्टल से आधा किलोमीटर, किलोमीटर, 5 वक्त उनका आना मुश्किल है, तो वहीं पर कोई एक जगह उनकी तय करवा के 5 वक्त की नमाज़ शुरू करवा दें, और किसी एक नमाज के बाद फ़ज़ाइल की तालीम शुरू करवाओ कि रोज़ाना पाबंदी से फ़ज़ाइल की किताब को पढ़ें, सुनें। और जो लड़के गली में, मोहल्ले में, घर में रहते हैं अपने, तो अपनी मस्जिद के साथ जुड़ जाएं। ऐसे ही रोज़ाना अपने फारिग वक्त में से आधा घंटा, घंटा, जितनी आपको फुर्सत है, अपनी मस्जिद की जमात के साथ रहकर, अपने मोहल्लों की मुलाकातों के साथ साथ, आप लोगों को मुकद्दम रखना है स्टूडेंट्स की मेहनत को। जितने लड़के आपके मोहल्ले में 20, 22, 25, उन सब से मुलाकात करो, उनसे बात करो, दीन की बात उनसे करें, नमाज के लिए उनको दावत दें, तालीम में बैठने की उनको दावत दें, महीने में एक मरतबा, 2 दिन 3 दिन जितना मौका मिलता है उसको जमात में लगाने की दावत दें। गर्मियों की छुट्टियों में चिल्ला होता है, दिवाली में 10 दिन की जमातें बनती हैं, तो उस वक्त को अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए उनको तैयार करें। करोगे इंशाल्लाह? कौन कौन अपनी मस्जिद को रोज़ाना वक्त देगा? जितना भी, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जितनी आपको फर्स्ट फुर्सत है दोगे इंशाल्लाह। और इसी तरह आपके हफ्तावारी जो गश्त होता है ना, हर मस्जिद में होता है, अपने गश्त के दिन गश्त में शरीक हो जाओ। अभी से आप लोग गश्त की पाबंदी करोगे ना तो गश्त करना सीखोगे, और गश्त एक दावत है, दावत देना सीखोगे। दूसरा, गश्त का फ़ायदा क्या होगा कि गश्त में चलने फिरने से घमंड पैदा नहीं होगा। क्या पैदा नहीं होगा बोलो ने भाई? घमंड आता है ना, घमंड, ज़रा आदमी के 80% आ जाते हैं तो 1 फुट ऊपर चलता है ना, बोलो ने भाई? 1 फुट ऊपर चलता है कि 10वीं में 80% आ गए, और किसी के अब्बा ने नई बाइक दिला दी हो तो अब तो रोड पर उड़ता है। तो ये क्या है? सारी घमंड की अलामतें, ये घमंड की अलामतें। इंसान इंसान बन के रहे, गश्तों में फिरेंगे तो घमंड पैदा होगा, तवाजु आएगी, छोटों बड़ों की तमीज़ अभी से आएगी कि गश्तों में फिरे हैं, बड़ों के साथ रहे हैं, मस्जिद के माहौल में रहे हैं, सहाबा की ज़िंदगी को सीखा है, तो घमंड पैदा नहीं होगा, तकब्बुर नहीं आएगा, तवाजु आएगी। और तवाजु बहुत बड़ी सिफत है, बहुत बड़ी सिफत। तो गश्त करोगे इंशाल्लाह? गश्त करें पाबंदी से, और महीने में 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन जितना मौका, बाज़े महीनों में 3-4 दिन की एक साथ छुट्टी होती है, 3 दिन चले जाओ। जिस महीने में 3 दिन की पूरी छुट्टी नहीं तो 2 दिन, शनिचर इतवार, आगे से तारीख तय कर लो 15-20 दिन 25 दिन पहले से। भाई पहली तारीख है, 25 तारीख को शनिचर है या जुमा है, तो जुमा की शाम से शनिचर और इतवार 3-2.5 दिन की हमारी जमात बनेगी, अभी से तारीख तक। और आप लोग ये फिक्र, इनको फिक्र दिलाओ, भाई दशहरा वाले ये छुट्टी आ रही है 2 दिन की 3 दिन की, तो आगे से उनको कहो, दशहरा के जिम्मेदार, भाई ये दिन तय कर लो अभी से, कोई स्टूडेंट की जमात बनाने की। सुरेंद्रनगर वालों का रब्ता करो, भाई इन दिनों में जमात बनानी है, और यहाँ वालों का रब्ता करो, ये इन दिनों में जमात, किसी जिम्मेदार को तय करें कि भाई वो ये जमात में साथ में उनकी तश्कील करें, मैं भी जा रहा हूँ और साथ में चलना है, तो फिर उनकी जमातें हर महीने निकलेगी, हर महीने इनकी जमातें बनेगी। बहुत से लड़कों की 2 दिन छुट्टी होती है महीने में, शनिचर इतवार की, जिनको नहीं होती है उससे कम होती है, फिर उसको मशवरा कर लो उस हिसाब से, उनको 1-1.5 दिन के लिए जोड़ लें। लेकिन आपको ऊपर की कॉलेज वाले लड़के ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास 2 दिन, ऐसे 8 लड़के भी मिल गए, 2 आदमी और लग गए, 10 आदमियों की जमात बन गई। लेकिन आप 10-15 दिन पहले से याद दिलाओगे ना, तो आपके उसको कैलेंडर देखकर जो है ना, उसके टाइमिंग लिखकर आगे से आप अपने मशवरे की डायरी में लिखते रहो भाई इन दिनों में छुट्टी आ रही। तो इस तरह से 2-3 दिन का जितना मौका मिले हर महीने लगाओगे इंशाल्लाह। कौन कौन लगाएंगे? और एक काम करना है, अपने घर में भी तालीम करनी। ये जो फजाइल अमाल की किताब है, किसके किसके घर पर हैं किताब? माशाल्लाह अक्सर घरों में किताब है, यानी तकरीबन तबलीग वालों के लड़के हैं ये। जिनके यहाँ है तो रोज़ाना तालीम करनी है, और जिनके यहाँ नहीं है तो वो तय करो कि इंशाल्लाह फजाइल अमाल सदक़ात बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, गुजराती में भी मिलती है। यहाँ कहाँ मिलती है? तुम्हारे यहाँ विरमगाम में मिलती है, छापी से छपी है, विरमगाम में भी मिलती है और जगहों से भी छपी है। तो वो फजाइल अमाल सदक़ात गुजराती में भी है, यहाँ ज़्यादा गुजराती चलती है ना कि उर्दू चलती है? उर्दू भी है घरों में पढ़ने वाली औरतें उर्दू? हाँ, तो उर्दू, गुजराती, हिंदी, अंग्रेज़ी सारी ज़बान में किताब मिलती है। तो फजाइल अमाल सदक़ात हैं, तो रोज़ाना कोई वक्त तय करके अपने घर में 15-20 मिनट तालीम करें। जिनके यहाँ नहीं हो रही है वो भी तय करो कि इंशाल्लाह तालीम करेंगे। कल दुआ के बाद घर जाकर कल शाम से तालीम शुरू कर दें, अपनी अम्मी को, बहनों को, अपने छोटे बड़े भाई बहन अब्बा हैं उन सबको बात करें। सुबह के वक्त अगर सब जमा होते तो सुबह कर लें, या दोपहर में होते दोपहर में, या शाम को कोई भी वक्त में अपने घर में 15-20 मिनट तालीम करनी है। करोगे इंशाल्लाह? तो एक काम ये करना है कि अपने घर में तालीम करें। और मस्जिदों में जमातें आती हैं, आती है तुम्हारे यहाँ जमात? जमात आवे तो जमात की खिदमत करें, उनकी नुसरत करें। जमात एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद से, उनके अपने पास वक्त है, उनका सामान लेकर उनके साथ जाएं, चलो हम छोड़ देंगे तुमको वहाँ। एक गांव से दूसरे गांव जा रही है, पैदल जा रही है जमात, तो हम उनके साथ भी चलो हम तुम्हारा सामान छोड़ देंगे। छोटे देहातों में जमात पैदल भी जाती है, तो उनको हम सामान लेकर छोड़ दें। बहुत सारे लड़कों को हमने देखा जो एक ज़माने में लड़के थे, अब बाज़े तो वो हैं जो हमसे भी बड़ी उम्र के हैं, और बाज़े वो हमारी उम्र के हमसे छोटे हैं। वो जब छोटे थे तो इस तरह जमातों की खिदमत करते थे, उनको खाना खिलाते थे, उन्होंने खाना खा लिया तो बर्तन धोकर दे देते थे, उनको उनका सामान उठाकर ले जाते थे। अल्लाह ताला ने उनकी खिदमत की वजह से उनको कबूल कर लिया, अब वो अपने अपने इलाकों में ज़िम्मेदार हैं और दावत का काम करते हैं, दावत का काम करते। तो आप लोग सब तय करोगे इंशाल्लाह इस काम को करेंगे। और करते जब तक पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरह पढ़ें और काम करें, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह सब 4-4 महीने लगाएंगे। लगाओगे? 4 महीने का एक कोर्स है, क्या वक्त हुआ? 4 महीने का एक कोर्स है, 4 महीने का, 4 महीने लगा लेंगे तो अल्लाह ताला दीन की समझ भी देगा और दीन की मेहनत करना आ जाएगा। तो लगाओगे 4-4 महीने? कौन कौन लगाएंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इस साल जो फाइनल ईयर वाले हैं तालीम का, जिनका आखिरी साल है, वो ज़रा खड़े हो जाओ कि इंशाल्लाह हम 4 महीने लगाएंगे अपनी तालीम पूरी करके। खड़े हो जाओ जो फाइनल लास्ट ईयर वाले, BSc हो, BCom हो, MCom हो, मेडिकल में हो, ITI में हो, कहीं भी, जिनका आखिरी साल है ये पढ़ाई का, जिनका पढ़ाई का आखिरी साल है, या जिन्होंने गुज़िश्ता सालों में पढ़ाई पूरी कर ली है वो भी जा सकते हैं। अभी इस साल गुज़िश्ता सालों में पढ़ाई पूरी हो गई, ये साल वैसे ही गुजर गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग इधर आ जाओ अख्तर भाई के पास, तीनों इनको बताओ भाई 4 महीने कैसे लगाने। अच्छा भाई, जिनको वैकेशन 32 दिन का, 35 दिन का, 40 दिन का मिलता है गर्मियों में, वो खड़े हो जाओ कि इंशाल्लाह चिल्ला लगाएंगे इस साल। जिनको वैकेशन मिलता है गर्मियों में, मई में वैकेशन होता है जिनका।